मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 7 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं अभिनव पाठक का जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप सबको दिया करता हूं। तो सूचना ये है कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल यानी कि शनिवार को बकायदे आपको प्रेस क्लिपिंग्स वैसे ही मिलेंगी जैसे कि वे मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ताकि आप साथ ही साथ मेंस का भी अभ्यास कर सके आंसर राइटिंग का। और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे बजट एवं स्वास्थ्य इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना, अखबारों में भी आपने पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इन सब में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये RBI जो है हमारी मौद्रिक नीति घोषित करता है और यह एक ऐसी घटना है जो हर 2 महीने में एक बार होती ही होती है, इसलिए रेपो और रिवर्स रेपो दर पर मैं लगातार आप लोगों से इससे पहले बातें करता रहा हूं और खासकर जब कोई विशेष बात होती है मुझे लगता है कि तभी उस पर कुछ विस्तार से अगर बात की जाए तो समय का सदुपयोग हो सकेगा। तो इस पर मैं कुछ विशेष बातें आपसे नहीं करने जा रहा हूं सिवाय इसके कि हर 2 महीने में इसकी घोषणा होती है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। इसलिए आपको जो RBI की जो मौद्रिक नीति में रिवर्स रेपो दर और जो दूसरे होते हैं इसी से जुड़े हुए तथ्य उनको उन्हें ठीक ठाक समझ लेना चाहिए। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस स्ट्रेट क्वेश्चंस प्री में नहीं पूछे जाते, इसके सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और फिर आपसे पूछे जाते हैं और उसमें आपको फंसाने की या उलझाने की जो भी आप कह लीजिए कोशिश की जाती है। दोस्तों जो दूसरी खबर है वो ये कि आप लोगों ने आज अखबारों में पढ़ा होगा कि जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हमारे लीडर्स थे उन्हें एक एक्ट के तहत अब बंदी बनाया गया है और वह है पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म इसका है PSA। तो कंफ्यूजन कहां होता है कि एस की जगह आप सिक्योरिटी भी कह सकते हैं क्योंकि हिंदी में वही होगा सार्वजनिक सुरक्षा कानून, तो उसमें एस की जगह सेफ्टी की जगह सिक्योरिटी शब्द भी आ जाता है। तो इंग्लिश में बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। तो बेहतर होता है होगा कि हम लोग थोड़ा सा पब्लिक जो सेफ्टी एक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें PSA ये क्या है। ये एक्ट है फ्रेंड्स, नाम से बहुत क्लियर है कि पब्लिक यानी कि सार्वजनिक सेफ्टी सुरक्षा एक्ट कानून, ये 1978 में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर PSA एक्ट है, याद रखिए जम्मू कश्मीर के लिए ही, इसके एक्ट का पूरा नाम है JK PSA एक्ट 1978 में, ये आपके क्लियर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये। इसमें गवर्नमेंट को इसके तहत ये अधिकार दिया गया कि वो किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक डिटेन कर सकता है यानी कि नजरबंद कर सकता है बिना किसी कोर्ट ट्रायल के। देखिए आपको वैसे सामान्य तौर पर मालूम है कि अगर आप किसी को नजरबंद करते हैं तो एक निश्चित अवधि के तहत आपको उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, लेकिन इसके तहत यह अधिकार दिया गया सरकार को कि वो 2 साल तक उसे बिना कोर्ट बिना ट्रायल के नजरबंद रख सकती है। लेकिन कुछ चीजें उसमें व्यवस्था की गई, पहला तो यह है कि जो आप जब किसी को डिटेन करते हैं तो कोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बकायदे 1 महीने के अंदर, 4 सप्ताह कहा जाता है, 4 सप्ताह के अंदर एक सलाहकार बोर्ड बनाना होगा। सलाहकार बोर्ड कि जो सरकार का जो डिटेंशन ऑर्डर है कि भाई इनको नजरबंद किया जाए, उस डिटेंशन ऑर्डर पर विचार कर सके। और ये जो बोर्ड होगा उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है कि 8 सप्ताह के अंदर वह बकायदे सरकार के इस आदेश पर बोर्ड विचार करेगा, और विचार करने के बाद फिर ये बताएगा कि जो सरकार का आदेश है वो सही है या गलत है। फिर आगे की जो कार्यवाही होगी वो बोर्ड के आदेश के अनुसार होगी, या कह लीजिए बोर्ड की सिफारिश के अनुसार होगी। और देखिए अब होता यह है कि इसमें दो स्थितियां हैं। तो पहली स्थिति यह है कि अगर बोर्ड को यह लगता है कि इनके खुले रहने से यानी कि बाहर आ जाने से किसी पब्लिक या कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरा है, हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसे नजरबंद किया गया है 1 साल तक के लिए आप रख सकते हैं। और यदि यह लगता है कि इससे राज्य की सुरक्षा को ही खतरा है, अगर बोर्ड ऐसा मानती है, तो फिर इसे 2 साल तक के लिए नजरबंद रखा जा सकता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए है फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह की जब कोई भी नए एक्ट या इसकी बातें अखबारों में आती हैं तो सामान्यतः प्री में पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। दोस्तों मैं एक काउंसिल के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। देखिए अक्सर आप देखते हैं कि जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कभी कभी इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं कि आप इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, इस पर आपके क्या विचार हैं, है ना। तो अब जो हम विचार लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, तो विचार आप बकायदे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई कदम उठाया है तो आप वहां से भी ले सकते हैं कि देखिए उन्होंने ये किया। और आपको ध्यान होगा कि बीच बीच में मैं इनकी चर्चा भी करता रहता हूं, और खासकर जो हम करेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं उस करेंट कंटेंट में अक्सर अगर किसी स्टेट ने कोई नई योजना शुरू की है, कोई नया से विचार लेकर के वो सरकार आई है, तो हमारी हम लोग की कोशिश होती है कि वो आप तक हम करेंट कंटेंट के माध्यम से डेफिनेटली पहुंचा दें। तो यहां जो मैं आपको बता रहा हूं वो मध्य प्रदेश सरकार ने, उस कैबिनेट ने फैसला किया है कि वह एग्रीकल्चर एडवाइजरी काउंसिल बनाएगी। एग्रीकल्चर एडवाइजरी काउंसिल यानी कि कृषि सलाहकार परिषद, ये जो परिषद होगा अब आप देखिए कि चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे। चीफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होने का मतलब है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट परिषद होगी, है ना। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे इसके वाइस चेयरमैन होंगे, और फिर 20 सदस्य इसमें होंगे जिसमें कुछ सरकार के लोग होंगे, और अच्छी बात यह है कि इसमें 7 सदस्य गैर सरकारी भी होंगे, जो उसमें कृषक होंगे, कृषक आंदोलन से जुड़े हुए लोग होंगे, इस तरह से गैर सरकारी लोग भी इसमें होंगे। ये एक परिषद होगी, और ये जो परिषद है ये बकायदे जो कृषक संगठन हैं, जो किसान हैं, उन सबसे लगातार संपर्क में रहेगी, और ये उनसे बातचीत करती रहेगी, और फिर जो उनसे बातें करने के बाद उनको लगेगा उस पर फिर सरकार को सिफारिश करेगी कि भाई आप किसानों के लिए ये योजना लागू कीजिए, और फिर सरकार उस योजना को लागू करेगी। और जब योजना लागू हो जाएगी तो उसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी इस परिषद को दी गई है कि जो योजनाएं लागू की जा रही हैं फिर आप देखिए कि वो सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं, यानी कि ये सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड नहीं है कि बस अपना सिफारिश दे दिया और बात खत्म हो गई, और केवल अपने द्वारा सिफारिश की गई योजनाओं की निगरानी की बात नहीं है बल्कि इसको कुछ दूसरे दायित्व तो भी सौंपे गए हैं, जैसे किसानों के ऋण माफी से संबंधित योजनाएं आती हैं तो ये काउंसिल देखेगी को ठीक तरीके से लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, किसानों को जो निर्धारित मूल्य सरकार ने फिक्स किया है उत्पादों के, जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनके दाम सही तरीके से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, किसान क्या मांग कर रहे हैं इसके बारे में भी वो बकायदे फीडबैक लेती रहेगी। आपको मालूम है कि किसानों की सहायता के लिए केंद्र बहुत सी योजनाएं चला रही है, राज्य सरकारें भी बहुत सी योजनाएं चलाती रहती हैं, तो बकायदे उनकी भी निगरानी करने की जिम्मेदारी इस काउंसिल को दी गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी एक थोड़ा सी एक स्टडी निकली है, और उस स्टडी में दोस्तों ये कहा गया है कि भारत में जो आलू का उत्पादन होता है उसमें से केवल 6% आलू ही प्रोसेस्ड हो पाती है, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से तब्दील हो पाती है, जबकि यूरोप में 60% है। तो सिफारिश की गई है कि एक बहुत बड़ी बात हो सकती है अगर भारत आलू उद्योग को आगे बढ़ा सके, यानी कि आलू से संबंधित जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होंगे उन्हें आगे बढ़ाए। दोस्तों आज मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। मुख्य विषय का संबंध बजट से है। आपने बजट में ये पढ़ा कि इस बार सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए यानी कि हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए 69,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। पिछले साल ये 62 पॉइंट समथिंग था, मतलब मोटे तौर पर आप 62,000 करोड़ कह सकते हैं, अब वो हुआ है 69,000 करोड़। तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब वृद्धि नहीं की गई है, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% की वृद्धि है जो नहीं के बराबर है। दोस्तों, खासकर भारत में दो चीजों की आवश्यकता लगातार महसूस की जाती है। जितने भी शोध होते हैं, अध्ययन होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जैसे हमारे अभी अभिजीत बैनर्जी साहब हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला, हर कोई यह कहता है कि भारत में दो क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एलोकेशन की जरूरत है, धन आवंटन की जरूरत है, या यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसमें एक है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और जबकि हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो शिक्षा और स्वास्थ्य की ही है। मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में तो आप यूं कह लीजिए कि हम चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जो छोटे छोटे देश हैं, इन सब से भी बहुत पीछे हैं। इसके बारे में इससे पहले हम लोगों ने काफी बातें की थी कि एलोकेशन कितना है। अब देखिए होता क्या है कि स्वास्थ्य की हालत खराब होती है, जैसे ही किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कि वो व्यक्ति गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर रह रहा है, किसी का स्वास्थ्य उसके परिवार के सदस्यों का खराब हुआ, वो अस्पताल में जाता है, सरकारी अस्पतालों में उसका इलाज हो नहीं पाता है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद 1990 के बाद धीरे 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 ये हमारे जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, धीरे धीरे खराब होते चले जा रहे हैं। और उसका कारण केवल यह है कि सरकार अब ये सारे दायित्व प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये सब इतने महंगे हैं कि अगर वो गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर रहने वाला व्यक्ति वहां जाता है तो सीधी सी बात है कि वो फट से गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। तो इस तरह से सरकार बहुत कोशिश करती है कि गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाती है और वो फिर से डिप करके वो नीचे चले जाते हैं। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा फैक्टर है और भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO जिसे आप कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो सामान्यतः ये मानता है कि 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए, उसकी मान्यता है। ये लगभग लगभग आदर्श स्थिति है। हमारे यहाँ 1,500 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है, और वो भी अगर आप गाँव और नगरों को अलग अलग करके देखेंगे तो गाँव में तो और ज़्यादा स्थिति खराब है। तो सोच करके देखिए कि हमारे यहाँ कितनी कमी है, और कैलकुलेट किया गया कि भारत में अभी भी लगभग 4.5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है, 4.5 लाख डॉक्टर्स, तब जाकर के आप स्वास्थ्य को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर बनाने के लिए आपको मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, फिर इन मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ करके जो डॉक्टर निकले हैं उनको अस्पताल प्रोवाइड करना पड़ेगा। केवल अस्पताल ही नहीं, बल्कि फिर उस अस्पताल में आपको दूसरी चीजें प्रोवाइड करेंगे कि उस तरह के इक्विपमेंट हो, नर्सेज हो, पूरा स्टाफ हो। और भारत में इसकी लगातार बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो चलिए अपनी तरफ से एलोकेशन कर रही है, लेकिन राज्य सरकार भी इस मामले में बहुत सचेत नहीं है। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो राज्य हैं हमारे वो अपनी टोटल आमदनी का, GDP जिसे आप कहते हैं, केवल 4-5% खर्च करती हैं स्वास्थ्य पर, जबकि सामान्यतः ये माना जाता है कि उन्हें कम से कम अपनी GDP का 8% तो खर्च करना ही चाहिए, 8%। इस आधार पर आप कह सकते हैं दोस्तों कि एलोकेशन जो इस बजट में किया गया है, जो हमारा सबसे प्राइमरी फील्ड है एजुकेशन और हेल्थ का, इन दोनों में ही बहुत कम एलोकेशन हुआ है। चूंकि हम यहाँ हेल्थ की बात कर रहे हैं तो मैंने हेल्थ के आपको आंकड़े बताए हैं, तो बेहतर होगा देखिए आप आंकड़ों के जंजाल में न फंस करके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं उन्हें अपने दिमाग में बसा लें। तो बसाने के लिए एक आंकड़ा मैं आज आपको और दे रहा हूं, कुछ आंकड़े मैंने इससे पहले भी दिए थे, और वो है 69,000 करोड़। ये है हेल्थ सेक्टर के लिए, राइट? तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ मृत्युंजय पांडे को। मृत्युंजय, आपने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जितने विस्तार से लिखा है, डेफिनेटली उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस से इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। अन्य दोस्तों के नाम हैं कमलेश कुमार, गोपाल कुमार साह असम से, सुयस तिर्की, के बी मीना, पुष्पांजलि सिंह, गीतिका गौतम, सज्जन इस्लाम, राजेंद्र प्रसाद यादव गिरिडीह झारखंड से, सगुना, नितेश विश्वकर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, और भानु सिंह, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। 2 दिनों के लिए आप सबसे विदा भी लेना चाहूँगा और साथ ही साथ 2 दिनों के लिए आप सबको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। स्वीकार करें। नमस्कार।